अध्याय 7 शब्द सौष्ठव एक अथवा अधिक वर्णों से निर्मित सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि को शब्द की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए मैं, तुम, तू, हाथी, तरबूज, दूध, ये सारे शब्द हैं। ये शब्द एक अथवा अधिक अक्षरों से बने हैं और इनका अपना अर्थ भी है। जैसे दूध कहने से एक पेय पदार्थ विशेष का बोध होता है, उसी प्रकार हाथी कहने से एक पशु विशेष का ज्ञान होता है। इस प्रकार ये किसी स्वतंत्र अर्थ की ध्वनि देते हैं। भेद शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक व निरर्थक। सार्थक शब्द जिस शब्द का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, विद्यालय, घर, चिकित्सालय इत्यादि। निरर्थक शब्द जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए खट पट चटर पटर फचर फचर इत्यादि। पशु पक्षियों की बोली, किसी चीज के गिरने की आवाज, किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि इत्यादि जैसी कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी होती हैं जो स्वयं से सार्थक नहीं होती, किंतु जब वे शब्दों के साथ मिल जाती हैं तब सार्थक कहलाती हैं। ऐसी ध्वनियाँ शब्दांश कहलाती हैं। उदाहरण के लिए का, से, ने, पन, तव इत्यादि। उन शब्दांशों को जो शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए आहार शब्द में आ उपसर्ग है। उन शब्दांशों को जो शब्दों के बाद आते हैं प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए महत्व शब्द में तत्व प्रत्यय है, का, से, ने इत्यादि कारक के चिन्ह कहलाते हैं। अब जहाँ तक इन दोनों प्रकार के शब्दों का व्याकरण से संबंध है तो व्याकरण में मात्र सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि सार्थक शब्दों के द्वारा ही आप अपनी भावनाओं की बहुविधि अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेखन आदि कर सकते हैं। लेखन अथवा अभिव्यक्त के समय जितने शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं वे 8 तरह के होते हैं। वे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। इन 8ों पर संबंधित अध्याय में विधिवत विचार किया गया है। ये 8 प्रकार के भेद प्रयोग के अनुसार हैं, किंतु रूप के अनुसार मात्र 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी जिन शब्दों के रूप में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। अब इन चारों के अलग-अलग उदाहरण समझें। संज्ञा बालक, बालिका, छात्र, छात्राएं इत्यादि। सर्वनाम मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे इत्यादि। विशेषण अच्छा, अच्छी, अच्छे इत्यादि। क्रिया जाना, जा, जो इत्यादि। दूसरा अविकारी जिन शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। उदाहरण के लिए और, किंतु, अरे, आह इत्यादि। वेद उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के 3 भेद माने गए हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़। जिस शब्द के खंडों के अर्थ ना निकल सकें उन्हें रूढ़ शब्द कहलाता है। उदाहरण के लिए हाथ, पैर, हाथी, पान इत्यादि। यहाँ हाथ शब्द के दो खंड हा और थ है। हा और थ का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता। इस प्रकार यह शब्द रूढ़ हुआ। इसके अतिरिक्त उदाहरण के रूप में दिए गए सभी शब्दों को यही स्थिति है। दूसरा, यौगिक। जिस शब्द के खंडों का कोई अर्थ निकले वह यौगिक कहलाता है। यहाँ यह जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है कि रूढ़ शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय अथवा दूसरे शब्द के मिलाने से यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए विद्यालय, दुर्जन, सुयश इत्यादि। तीसरा, योग रूढ़। वह शब्द जो देखने में यौगिक संज्ञा के समान लगे किंतु जिन शब्दों के मेल से वह बना है उनके अर्थ का बोध ना कराकर किसी दूसरे अर्थ का बोध कराए तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। उदाहरण के लिए पंकज, जलद इत्यादि। पंकज शब्द पंक प्लस ज दो शब्दों के योग से बना है। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का है उत्पन्न। यह ठीक है कि कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है किंतु काई, जोंक, सिंघाड़ा इत्यादि चीजें भी तो कीचड़ में उत्पन्न होती हैं। इसके बावजूद पंकज केवल कमल को कहा जाता है। इसी प्रकार जलद, जल प्लस द इजकल टू जल देने वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है। नदी हो सकती है किंतु बादल को ही जलद की संज्ञा दी गई है। शब्द शक्ति। वस्तुतः शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली तीन शक्तियां मानी गई हैं। ये तीनों नीचे दी गई हैं, अभिधा, दूसरा लक्षण और व्यंजना। अब आप इन तीनों शक्तियों को अलग अलग उदाहरण समझें। अभिधा, जो शक्ति शब्दों के सामान्य अर्थ का बोध कराए उसे अभिधा कहा जाता है। उदाहरणतः कपि शब्द का सामान्य अर्थ बंदर वाचार्थ है। इस शब्द के अर्थ का बोध अभिधा शक्ति से होता है। लक्षणा, जो शक्ति शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंध किसी अन्य अर्थ का बोध कराए उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा द्वारा प्रकट अर्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है। उदाहरणतः सागर पर नगर, यहाँ सागर पर लाक्षणिक पद हुआ। सामान्य अर्थ में इसे कहा जाएगा सागर के प्रवाह में। प्रवाह में सागर का अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए लक्षणा के अंतर्गत ऐसे अर्थ को ना मानकर उससे संबंधित अर्थ को मान लिया जाता है। इस प्रकार माना हुआ अर्थ बनेगा सागर के तट पर नगर। व्यंजना, जो शब्द शब्दों के सामान्य और संबंधित अर्थ दोनों के अर्थ विशेष का बोध कराए उसे व्यंजना कहा जाता है। इस शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसमें व्यंग होता है, इसलिए इसके द्वारा प्रकट अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। उदाहरण के लिए अध्ययनरत है अपने किसी मित्र विद्यार्थी से उसका सहपाठी कहता है, लगता है इस बार तुम टॉप करोगे। यहाँ पर उसका कथन शब्द के अनुसार उसके अर्थ का ना होकर व्यंग्यात्मक प्रहार होता है। अभिधा और व्यंजना में अंतर। वास्तव में जहाँ अभिधा शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराती है वही व्यंजना शब्द विशेष के अर्थ का, दोनों का ही यही विशिष्ट पक्ष दोनों के बीच का अंतर भी है। उदाहरण के लिए दांत पीसना, इसका सामान्य अर्थ है दांतों का पारस्परिक घर्षण और विशेष अर्थ हुआ क्रोध करना। प्रथम अर्थ का बोध अभिधा शक्ति से होता है और द्वितीय का व्यंजना शक्ति से होता है। लक्षणा और व्यंजना में अंतर। जहाँ लक्षणा से संबंधित अर्थ का बोध होता है, वही व्यंजना से विशेष अर्थ का। दोनों शक्तियों के बीच अंतर यही है। उदाहरण के लिए सागर पर नगर, सागर शब्द संबंधित अर्थ तट का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ। दूसरी ओर सागर शब्द जब संबंध अर्थ तट को छोड़कर खारापन, व्यापकता और गहराई के विशेष अर्थ का बोध कराए, तब समझ लेना चाहिए कि इसमें व्यंजना शक्ति काम कर रही है। इसी प्रकार वाच्यार्थ चमत्कार रहित होता है, लक्ष्यार्थ कुछ कुछ चमत्कार किए होता है, व्यंग्यार्थ में चमत्कार विशेष का प्रभाव होता है। पिछले पृष्ठों पर शब्द भेद और शब्द रूपांतर पर विधिवत और सम्यक रूपेण प्रकाश डाला गया है। कर्मिक अध्ययन के अंतर्गत यहाँ शब्द रचना अथवा शब्द उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। शब्द रचना उपसर्गों के योग से, दूसरा प्रत्यय लगाकर स्वतंत्र शब्दों के लिए। आगे के अध्यायों में इन तीनों अर्थात उपसर्ग, प्रत्यय और समास पर प्रकाश डाला गया है। शब्द साधन एक दृष्टि में, एक शब्द सम्यग्ज्ञात सुपयक्तः सर्वगः लोकचाणकम् गृहीभवति, यद्यपि बहुताधीशः तथापि पठ पुत्र व्याकरणामः महर्षि पतंजलि। हे पुत्र, चाहे तुम अधिक व्याकरण न पढ़ो, पर थोड़ा बहुत पढ़ना ही चाहिए, जिससे स्वजन प्रिय बंधु और स्वजन कुत्ता रूपी बंधु शब्दों का उचित प्रयोग न हो जाए। इसी प्रकार सुभग के स्थान पर सभग और सकृत की अपेक्षा सकृत का प्रयोग न हो जाए, जिससे सभ्य समाज में अश्लीलता का प्रचार हो। शब्दों में भी आत्मा तथा जीव ब्रह्मा का व्यक्त और स्पष्ट अंश होता है, उनका भी जन्म और विकास होता है। कुछ गोत्र और परिवार होते हैं, उनका महत्व उन प्राणियों से बढ़कर होता है जो उनका प्रयोग करते हैं। ऐसी उत्कृष्ट वस्तु को नगण्य समझकर हम बहुत बड़ा न्याय और अपराध करते हैं। शब्दों के ठीक ठीक अर्थ और आशय को समझना अपना और अपने देश तथा साहित्य का गौरव बढ़ाना है, और इसके लिए विपुल तपस्या और साधना होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा ऐसे तपस्वियों और साधकों की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। रामचंद्र वर्मा।